कारिका संख्या 6 प्रमाण विषय विवेचन सामान्यतस्तु दृष्टादतीन्द्रियाणां प्रतिरि रनुमाना तस्मादपि च सिद्धं परोक्षमाप्तागमात् सिद्धं अन्वयः सामान्यतो दृष्टात् अनुमानात् तु अतीन्द्रियाणां प्रतीति तस्मादपि असिद्धं परोक्षं च आप्तागमात् सिद्धं कारिकार्थ सामान्यतो दृष्ट अनुमान से अतीन्द्रिय इंद्रिय गोचर पदार्थों का ज्ञान होता है और अनुमान से जिन पदार्थों की सिद्धि नहीं हो पाती है वे परोक्ष पदार्थ आगम प्रमाण से जाने जाते हैं। भाष्यम तत्र केन प्रमाणेन किम साध्यम उच्यते सामान्यतो दृष्ट दनु मानातदिन्द्रियाणाम इन्द्रियाण्यतीत्य वर्तमानानां प्रतीतिः सिद्धि प्रधान पुरुषावतीन्द्रियौ सामान्यतो दृष्टेनानुमानेन साध्येते यस्मान् महदादिलिङ्गं त्रिगुणं यस्येदं त्रिगुणं कार्यं तत् प्रधानमिति यतश्चाचेतनं चेतनमिवाभाति अतोऽधिष्ठाता पुरुष इति व्यक्तं प्रत्यक्षसाध्यं तस्मादपि चासिद्धं परोक्षमाप्तागमा सिद्धं यथेन्द्रो देवराजः उत्तराः कुर्वः स्वर्गे अप्सरसः इति परोक्षमाप्तवचनात् सिद्धं गौणपाद भाष्य का भावार्थ चतुर्थ कारिका में यह प्रतिज्ञा की गई थी कि प्रमेय सिद्धि के लिए ही दर्शन जगत में प्रमाण को आवश्यक माना गया है। प्रस्तुत कारिका में उक्त प्रतिज्ञा के अनुसार किस प्रमाण से किस प्रमेय की सिद्धि प्रतीत ज्ञान होती है इस पर अति संक्षेप एवं सामूहिक रूप से प्रकाश डाला जा रहा है। वे पदार्थ जो अतीन्द्रिय हैं सामान्यतो दृष्ट अनुमान से अनुमित होते हैं जैसे साख्याभिमत प्रधान एवं पुरुष प्रत्यक्ष गम्य नहीं है ये अतीन्द्रिय होने से अनुमान गम्य है यही सामान्यतो दृष्ट अनुमान है। यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि कार्य से कारण का अनुमान किया जाता है जिस प्रकार पुत्र को देखकर पिता का अनुमान किया जाता है उसी प्रकार यहाँ त्रिगुणात्मक महदाधिकारियों को देखकर उनका कारण प्रधान अनुमित होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण का उद्देश्य व्यक्त इंद्रिय गोचर पदार्थों का ज्ञान कराना है जिन अतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान कराने में अनुमान प्रमाण समर्थ नहीं होता है वे परोक्ष पदार्थ आगम प्रमाण से जाने जाते हैं। इंद्र का राजत्व अप्सराओं को स्वर्गास्थिति तथा कुरुदेश की उत्तरवर्तिता ये परोक्ष पदार्थ आगम प्रमाण के विषय हैं। इस प्रकार सामान्य रूप से प्रमाणों के विषयों प्रमेयों का विभाजन किया गया प्रत्यक्ष न हो सकने में निमित्त कारिका अति दूरात सामीप्यादिन्द्रिय घातान मनो अनवस्थानात सौक्ष्म्याद व्यवधानाद विभवात समानाभिहाराच्च अन्वयः अति दूरात सामीप्यात इंद्रिय घातात मनो अनवस्थानात सौक्ष्म्याद व्यवधानाद अभिभवात समानाभिहाराच्च पदार्थस्य प्रत्यक्ष योग्यता अभिभूयते कारिकार्थ अत्यंत दूर अत्यंत समीप इंद्रिय शैथिल्य विकलता मनश्चांचल्य अत्यंत समीप व्यवधान अभिभव तथा समान जातीय में समिश्रण होने के कारण प्रत्यक्ष योग्य पदार्थ भी दिखलाई नहीं पड़ता है। भाष्यम अत्र कश्चिदाह प्रधानम पुरुषो वा नोपलभ्यते यच नोपलभ्यते लोके तन्नास्ति तस्मात्तावपि नस्तः यथा द्वितीयम शिरः तृतीयो बहुरिति तदुच्यते अत्र सता प्यर्थानामष्ट धोपलब्धिन भवति तद्यथा इह सताम्यप्यर्थानाम अतिदूरान दनुपलब्धिर दृष्टा यथा देशांतर स्थानाम चैत्र मैत्र विष्णु मित्राणाम सामीप्याद्यथा चक्षुषाञ्जनानुपलब्धि इंद्रियाभिघाता द्यथा बधिरांधयोः शब्द रूपानुपलब्धि मनो अनवस्थानाद्यथा व्यग्रचित्तः सम्यक् स्थितमपि नावधारयति सौक्ष्म्याद्यथा धूमोष्म जलनिहार परमाणवो गगन गता नोपलभ्यन्ते व्यवधानाद्यथा कुण्डेन पिहितं वस्तु नोपलभ्यते अभिभवाद्यथा सूर्य तेजसा भिभूता। ग्रह नक्षत्र तारकादयो नोपलभ्यन्ते समानाभिहाराद् यथा मुद्गदराशौ मुद्गः क्षिप्तः कुवलयामलकमध्ये कुवलयामलके क्षिप्ते कपोतमध्ये कपोतो नोपलभ्यते। समानद्रव्यं ध्याहृतत्वात् एवमष्टाधनुपलब्धिसताम् अर्थानामिह दृष्टा। गौणपाद भाष्य का भावार्थ। आज का बुद्धिजीवी मानव उसी पदार्थ का अस्तित्व स्वीकार करने को तैयार है जिसका उसे प्रत्यक्ष हो सके। तदतिरिक्त परोक्ष पदार्थों पर उसे विश्वास नहीं हो पाता है। अतः प्रत्यक्ष का विषय न होने से उसे प्रकृति पुरुष इत्यादि पदार्थों की कल्पना अप्रामाणिक प्रतीत होती है। ईश्वर कृष्ण प्रस्तुत कारिका में प्रत्यक्ष का विषय न हो पाने से यदि पदार्थ असत रूप माना जाए तो प्रत्यक्ष योग्य पदार्थ के भी किसी दोषवशात न दिखाई पड़ने से उसका अभाव कहे जाने को अव्यवस्था अति प्रसंग उत्पन्न होगी। इस आशय को ध्यान में रखकर प्रत्यक्ष के विघटक कारणों पर प्रकाश डालते हैं। एतावता ईश्वर कृष्ण प्रमाणत्रय से असिद्ध शश श्रृंग वंध्यापुत्र आदि पदार्थों को ही अलीक मिथ्या सिद्ध कर रहे हैं। अति दूरतः प्रत्यक्ष योग्य पदार्थ का भी प्रत्यक्ष तभी हो पाता है जब पदार्थ इंद्रिय के समीप रहता है। सभी दार्शनिकों ने विषय के प्रत्यक्षार्थ इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को कारण स्वीकार किया है। भले ही उसके मुख्य साधन अथवा गौण साधन के विषय में उनका भिन्न भिन्न मत है। अतः अति दूरता विषय के प्रत्यक्ष का विघटक कही जाती है। जैसे समीप रहने पर दिखाई पड़ने वाली चैत्र मैत्र आदि दूर देश में चले जाने पर चक्षुरिंद्रिय के विषय नहीं बन पाते हैं। अति समीपता अति दूरता के ठीक विपरीत अति समीपता भी पदार्थ प्रत्यक्ष की प्रतिबंधिका है। जैसे अंचित नेत्र स्वाधिकरणस्थ कज्जल को देख पाने में असमर्थ रहता है। ऐन्द्रिक दौर्बलता अत्यंत दूर अथवा अत्यंत समीप न रहकर यदि पदार्थ प्रत्यक्ष होने की स्थिति में भी रहे तो भी उसे अंध पुरुष नहीं देख पाता है। इसी भांति क्षीण सामर्थ्य वाली श्रोत्रादि इंद्रियां अपने अपने शब्दादि विषय को ग्रहण करने में समर्थ नहीं रहती हैं। मनस अनवधानता विषय प्रत्यक्ष के विघटक उपर्युक्त तीनों कारण के न रहने पर भी एकाकी मनस अनवधानता मनस चांचल्य विषय प्रत्यक्षार्थ बाधा स्वरूप आ खड़ी होती है। फलतः इंद्रियार्थ सन्निकर्ष रहने पर भी विषय का बोध प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है। जैसे पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर ऑफिस से भागता हुआ व्यक्ति समीप से निकले हुए अपने बंधु को नहीं देख पाता है। मनस अनवधानता को यदि विषय प्रत्यक्ष का मुख्यतम अवरोधक कहा जाए तो अत्युक्ति न होगी। इसलिए व्यावहारिक अथवा पारमार्थिक किसी भी प्रकार की साधना के लिए दार्शनिक ने सर्वप्रथम चित्त को एकाग्र बनाने का उपदेश दिया है। सूक्ष्मता दार्शनिकों ने विषय प्रत्यक्ष के लिए विषयगत उद्भूत रूप तथा महत् परिमाण को कारण माना है। अतः सूक्ष्म परिमाण वाले पदार्थ जिनका महत् परिमाण नहीं है का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है। तेज आदि तत्वों का सूक्ष्मतम अंश परमाणु कहलाता है। धूम उष्म जल हिम आदि के परमाणु आकाश में उड़ते हुए भी दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। व्यवधानता व्यवधान का अर्थ बाधा या रुकावट है। भित्ति रूप व्यवधान के कारण दूसरे कक्ष में पड़ा वस्तु दिखाई नहीं पड़ता। इसी प्रकार भूगर्भ में व्यवहित हीरा सोना आदि बहुमूल्य पदार्थ दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। अभिभवता ऊपर कहा जा चुका है कि पदार्थ का प्रत्यक्ष तभी हो पाता है जब उसमें महत् परिमाण एवं उद्भूत रूप निहित रहता है। जब पदार्थ का उद्भूत रूप किसी अन्य बलवान कारण से शिथिल हो जाता है तब उस अनुद्भूत पदार्थ का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है। जैसे रात्रि में दिखलाई पड़ने वाले अनभिभूत चंद्र नक्षत्र आदि दिन के समय तेजस्वी सूर्य से भीभूत हो जाने के कारण दिखलाई नहीं पड़ते हैं। समिश्रणता विषय प्रत्यक्ष के लिए पदार्थ का पृथक अस्तित्व अमिश्रित रूप भी आवश्यक रहता है, अतः समिश्रणता बाधा स्वरूप कही गई है। जैसे गंगा और यमुना नदी के दो पृथक पृथक जल बिंदुओं को मिला देने पर उनकी पृथक पृथक प्रतीति नहीं हो पाती है, इसी प्रकार मूंग, कमल, आंवला एवं कबूतरों के अपने अपने समूह में छोड़े गए, मिलाए गए मूंग आदि की पहचान पाना कठिन हो पाता है, क्योंकि सदृश पदार्थों में मिल जाने के कारण उनका विशिष्ट पृथक अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उपर्युक्त वर्णन से यह निश्चित हुआ कि प्रत्यक्ष के विघटक उक्त आठ कारणों से जब प्रत्यक्ष योग्य पदार्थ का भी प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है, तब अतीन्द्रिय पदार्थों के विषय में तो कहना ही क्या। अतः पदार्थ के न दिखाई पड़ने में यदि उपर्युक्त कोई विघटक हेतु हो तो उस पदार्थ का अभाव नहीं समझना चाहिए। प्रकृति प्रत्यक्ष का विघटक हेतु कारिका सौक्ष्म्या तदनुपलब्धिर भावात कार्यस तदुपलब्धे महदादि तच्च कार्य प्रकृति स्वरूपम विरूपम च अन्वय सौक्ष्म्यात तदनुलब्धि न अभावतः कार्यतः तदुपलब्धे तच्च कार्य महदादि यह प्रकृति स्वरूपम विरूपम च अस्ति। कारिकार्थ प्रकृति पुरुष भी अत्यंत सूक्ष्म तत्व है, इसलिए उसका प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं है कि असत होने से प्रकृति की उपलब्धि नहीं हो पाती है, क्योंकि उसके कार्य के आधार पर प्रकृति का अस्तित्व अनुमित होता है। प्रकृति के कार्य बुद्धियादि हैं, ये कारणभूत प्रकृति से अभिन्न भी हैं और भिन्न भी। भाष्यम एवं चास्ति किमभ्युपगम्यते प्रधान पुरुष योरपि एतयोर्वानुपलब्धि केन हेतुना केन चोपलब्धि तदुच्यते सौक्ष्म्यातनुपलब्धि प्रधानस्येत्यर्थ प्रधानं सौक्ष्म्यानुपलभ्यते यथा काशे धूमोष्मजल निहार परमाणवः संतोपि नोपलभ्यन्ते कथं तर्हि तदुपलब्धि कार्यतस्तदुपलब्धि कार्यं दृष्ट्वा कारणं अनुमीयते अस्ति प्रधानं कारणं यस्येदं कार्यं बुद्धिरहंकारः पंच तन्मात्राणि एकदशेन्द्रियाणि पंच महाभूतान्येव तत् कार्यं तच्च कार्यं प्रकृति विरूपं प्रकृतिः प्रधानं तस्य विरूपं प्रकृतेर सदृशं सरूपं च समान रूपं च यथा लोके अपि पितुस्तुल्य इह पुत्रो भवत्य तुल्यश्च एन हेतुना तुल्यं तुल्यं तदुपरिष्टा दक्ष्यामः गौड़पाद भाष्य का भावार्थ। पूर्व पक्षी का कहना है कि प्रत्यक्ष के विघटक आठ हेतु तो समझ में आ गए हैं, लेकिन यह बताइए कि प्रधान को अनुपलब्धि में कौन हेतु है और किस प्रमाण से उसकी सत्ता स्वीकार की गई है। प्रस्तुत कारिका में प्रधान तत्व से संबंधित सद्सद्वा संशय का निराकरण किया गया है। कारिका में आया तत्पद प्रकृति का परामर्शक है। जिस प्रकार आकाश में उड़ते हुए धूम, उष्मा, जल आदि के परमाणु दृष्टिपथ में नहीं आते हैं क्योंकि वे सूक्ष्म हैं, उसी प्रकार प्रकृति के प्रत्यक्ष न होने में उसका अभाव नहीं अपितु प्रकृतिगत सूक्ष्मता कारण है। एतावता यह निकला कि प्रकृति की सिद्धि में यद्यपि प्रत्यक्ष प्रमाण असमर्थ है, तथापि तदुपजीव्य अनुमान प्रमाण समर्थ है। आचार्य गौड़पाद अब उपर्युक्त प्रतिज्ञा के अनुसार प्रकृति को अनुमान गम्यता का उपपादन करते हैं। यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि कार्य एवं कारण में अविनाभाव संबंध निहित है। कार्य को देखकर कारण तथा जहाँ कारण प्रत्यक्ष गम्य हो वहाँ कारण को देखकर कार्य का अनुमान किया जाता है। प्रकृति की सत्ता उसके कार्य महदादि से अनुमित होती है। प्रकृति की वंशावली में बुद्धि, अहंकार, एकादश इंद्रियां, पंच तन्मात्र एवं पंच महाभूत क्रमशः आते हैं। कार्यकारण में भेदाभेद माना गया है। जिस प्रकार पुत्र कुछ अंशों में पिता की प्रतिमूर्ति समान होता है और कुछ अंशों में उससे भिन्न असमान होता है, उसी प्रकार प्रकृति के अनुमापक महदादि कार्य अपने कारण से भिन्न भी हैं और उससे अभिन्न भी हैं। एतावता प्रकृति की सत्ता का अपलाप नहीं किया जा सकता। सत्कार्यवाद कारिका असदकरणादुपादान ग्रहणात् सर्वसंभवावात् शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच सत्कार्यम् अन्वय कार्य सत्कथमिति जिज्ञासायाम् असदकरणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् शक्तस्य शक्यकरणात् कारणाभावात् च कारिकार्थ कारण व्यापार के पूर्व भी कार्य अपने कारण में निहित रहता है, ऐसा क्यों? उत्तर है, असत पदार्थ की अभिव्यक्ति उत्पत्ति नहीं होती है। दूसरे शब्दों में असत पदार्थ का कोई कारण नहीं होता है। तत्तत् कार्य की उत्पत्ति के लिए व्यक्ति तत्तत् कारण को ही ग्रहण करता है। किसी एक उपादान कारण से समस्त कार्यों की उत्पत्ति होना संभव नहीं है, अपितु सुनिश्चित कारण से ही सुनिश्चित कार्य की अभिव्यक्ति होती है। जिस कारण में जिस कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति निहित रहती है, उसी शक्त कारण से उसी शक्य कार्य को प्राप्त ग्रहण किया जाता है। कारण में पाए जाने वाले गुण उसके कार्य में भी अनुप्रविष्ट रहने से कार्य कारण में एक निश्चित संबंध दिखाई पड़ता है। एतावता उक्त पांच हेतुओं से कार्य अभिव्यक्ति के पूर्वी कारण में कार्य का अस्तित्व सिद्ध होता है। भाष्य यदिदं महदादिकार्यं तत् किं प्रधाने सत् उताहो स्विद् सत् आचार विप्रतिपत्तेरयं संशयः यतोऽत्र सांख्यदर्शने सत्कार्यं बौद्धादीनां सत्कार्यं यदि सत् असत् भवति अथा सत् सन्न भवतीति विप्रतिषेधः तत्राह असद् न सत् असत् असतो करणं तस्मात् सत्कार्यं इह लोके सत्करणं नास्ति यथा सिक्ताभ्यस्तैलोपत्ति तस्मात् सत्तः करणादस्ति प्रागुत्पत्ते प्रधाने व्यक्तम् अतः सत्कार्यम् उपादान ग्रहणात् उपादानं कारणं तस्य ग्रहणात् इह लोके यो येनार्थि स तदुपादान ग्रहणं करोति दभ्यर्थि क्षीरस्य न तु जलस्य तस्मात् सत्कार्यम् इतश्च सर्वसंभवाभावात् सर्वस्य सर्वत्र संभवो नास्ति यथा सुवर्णस्य रजतादौ तृणपांशु सिक्तासु तस्मात् सर्वसंभवाभावात् सत्कार्यम् इतश्च शक्तस्य शक्यकरणात् इह कुलालः शक्तो मृदण्ड चक्र चीवर रज्जु नीरादिकरणम् उपकरणम् वा शक्यमेव घटम् मृत्पिण्डादुत्पादयति तस्मात् सत्कार्यम् इतश्च कारण भावाच्च सत्कार्यम् कारणम् यल्लक्षणमेव तल्लक्षणमेव कार्यम् अपि यथा यवेभ्यो यवाह ब्रीहिभ्यो ब्रीह यदा सत्कार्यम् स्यात् तत्ततः क्रोधवेभ्यः शालयः स्युः न च सन्तीति तस्मात् सत्कार्यम् एवम् पञ्चभिर्हेतुभिः प्रधाने महदादिलिङ्गम् अस्ति तस्मात् सत् उत्पत्तिर्नासत् इति गौणपाद भाषिका भावार्थ अष्टम कारिका द्वारा यद्यपि आचार्य ईश्वर कृष्ण प्रकृति की सत्ता स्थापित सिद्ध कर चुके हैं तथापि स्थाणु निखनन न्याय से सांख्य जिज्ञासुओं के स्पष्ट प्रतिपत्त्यर्थ वे नवी से सोलहवीं कारिका पर्यंत उक्त विषय को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करते हैं। इससे सांख्य के कतिपय अन्य सिद्धांतों पर भी प्रकाश पड़ता है। प्रस्तुत कारिका सांख्य के सत कार्यवाद की प्रतिष्ठापना के लिए है। प्रकृति में महदादि तत्वों की कारणता कही जाने से यह संदेह उपस्थित होता है कि महदादि कार्य अपने कारण प्रधान में सत रूप में है अथवा असत रूप में। कारण में कार्य के इस सद सद्वात संशय कार्य भी व्यक्ति के पूर्व अर्थात कारण व्यापार से पूर्व की दृष्टि से समझना चाहिए। इस संदर्भ में सांख्य दार्शनिकों का अपना विशिष्ट सिद्धांत है। इन्होंने अन्य दार्शनिकों के कारणवाद पर सीधा प्रहार किया है। बौद्ध वेदांती तथा नैयायिक आदि दार्शनिकों के यहाँ कार्य किसी न किसी रूप में असत माना गया है। सांख्याचार्यों का दृढ़ विश्वास है कि सत का कभी नाश असत्व नहीं हो सकता और असत को कभी सत रूप में परिणत नहीं किया जा सकता। इस संदर्भ में सांख्य दार्शनिकों का अपना विशिष्ट सिद्धांत है। इन्होंने अन्य दार्शनिकों के कारणवाद पर सीधा प्रहार किया है। बौद्ध वेदांति तथा न्यायिक आदि दार्शनिकों के यहाँ कार्य किसी न किसी रूप में असत माना गया है। सांख्याचार्यों का दृढ़ विश्वास है कि सत का कभी नाश असत तो नहीं हो सकता, असत को कभी सत रूप में परिणत नहीं किया जा सकता। अपने मत के पुष्टि अर्थ ईश्वर कृष्ण ने इस कारिका में 5 हेतुओं की उद्भावना की है। हेतु इस प्रकार है, असद करणात् वास्तविक जगत में जिसका अस्तित्व है वह सत तथा तद्भिन्न पदार्थ असत माना जाता है। दूसरे शब्दों में असत अत्यंता भाव तद्भिन्न स्थानी है। कारण व्यापार के पूर्व यदि कार्य कारण में असत रहे तो कारण व्यापार के द्वारा उसे कथम अपि सत नहीं बनाया जा सकता है। जैसे बालू से तेल की अभिव्यक्ति किसी भी प्रकार नहीं की जा सकती है क्योंकि बालू में तेल अत्यंत असत है। अतः सिद्ध हुआ कि कारण की भांति कार्य भी सत है। अतः प्रकृति जात महदादि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व उत्पत्ति के पश्चात तथा लय तीनों अवस्थाओं में सत रूप है। अंतर इतना ही है कि वर्तमान काल में कार्य की सत्ता स्फुट रहती है तथा अनागत एवं अतीत काल में अस्फुट रहती है। उपादान ग्रहणात् कारण के मुख्यतः 2 भेद हैं, उपादान कारण तथा निमित्त कारण। न्यायिक उपादान कारण को समवायी कारण कहते हैं, बौद्ध दार्शनिक निमित्त कारण को सहकारी कारण पुकारते हैं। निमित्त कारण उपादान कारण का सहायक होकर कार्योत्पत्ति के प्रति परंपरया कारण होता है। उभय कारणों में उपादान कारण प्रधान है, अतः उपादान कारण को लेकर सत्कार्यवाद का स्थापक द्वितीय हेतु उपन्यस्त हुआ। प्रत्येक व्यक्ति यह आसानी से समझ सकता है कि जिसे जिस वस्तु की आवश्यकता रहती है वह उसी के अनुसार कारण को ग्रहण करता है। जैसे दध्यर्थी दूध को ही प्राप्त कर उसे जमाने की सोचता है, कोई भी अनुभवी व्यक्ति पानी भरे मटके को दधि रूप से प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता है। इस प्रकार कार्य अनुसार उपादान कारण के ग्रहण में नियमितता एवं सीमाबद्धता दिखलाई पड़ने से यह मानना अपरिहार्य हो जाता है कि कारण व्यापार के पूर्व भी कार्य कारण में सत रूप में निहित रहता है। सर्वसंभवा भावात् तीसरा हेतु यह है कि सभी का प्रकार के कारणों से सभी प्रकार के कार्यों की उत्पत्ति नहीं दिखलाई पड़ती क्योंकि समस्त कारणों में समस्त कार्यों का अभाव रहता है। जैसे रजत तृण पांशु तथा सिक्ता आदि में सुवर्ण का अभाव रहने से रजतादि सुवर्णोत्पत्ति के उपादान कारण नहीं बन पा सकते। इस प्रकार निश्चित कारण से निश्चित कार्य अभिव्यक्ति दिखलाई पड़ने से यह सिद्ध होता है कि सत्कारण अपने अव्यक्त रूप से विद्यमान सत्कार्य को ही व्यापार द्वारा प्रकट अभिव्यक्त उत्पन्न करता है। शक्तस्य शक्य करणात् जिसमें उत्पादन की सामर्थ्य निहित है उसे शक्त तथा जो उत्पन्न होने योग्य उत्पाद्य होता है उसे शक्य कहते हैं। जैसे शक्त मृत्तिका में शक्य घट को उत्पन्न करने की शक्ति निहित है, अतः कुंभकार मृत्तिका से घट का निर्माण करता है। कार्य कारण में शक्य शक्त संबंध तभी हो सकता है जब दोनों सत हों। एक के सत तथा दूसरे के असत रहने पर 2 असमानों में संबंध नहीं होता, अतः कार्य की तद्रूपता सिद्ध होती है। कारण भावाच जिस प्रकार कारण होता है उसी प्रकार का कार्य भी देखने में आता है। जैसे जौ के बीज से जौ की उत्पत्ति तथा धान्य के बीज से धान्य की उत्पत्ति देखी जाती है। इससे सिद्ध है कि जौ बीज में जौ बालियां सूक्ष्म अनभिव्यक्त रूप में निहित रहती हैं, अन्यथा जौ बीज से धतूरे का वृक्ष बढ़ता दिखलाई पड़ता है। कार्य कारण की यह समान रूपता सत कार्यवाद को पुष्ट करती है। एवंच कारण व्यापार से पूर्व भी कार्य सत है, यह बात ऊपर वर्णित अनेक प्रमाणों के द्वारा सुदृढ़ हो गई। व्यक्त तथा अव्यक्त के भिन्न भिन्न धर्म कारिका हेतु मदनित्यम व्यापी सक्रियम नेकमाश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम व्यक्तम अन्वय व्यक्तम हेतुमत अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम सावयवम् परतंत्रम् अव्यक्तम् एतद् विपरीतम् कारिकार्थ व्यक्त वर्गांतः पाति तत्वों का समूह उत्पत्तिशील विनाशशील संकोचशील क्रियाशील अनेकशील हेत्वाश्रयशील लयशील सावयवशील तथा पराधीनशील है। व्यक्त की उपर्युक्त शीलताओं से अव्यक्त रहित है अर्थात व्यक्त से भिन्न है। भाष्यम् प्रकृति विरूपम स्वरूपम च इति यदुक्तम तत् कथमित्युच्यते व्यक्तम महदादि कार्यम हेतुमदिति। हेतुरस्यास्ति हेतुमत् उपादानम् हेतुः कारणम् निमित्तमिति पर्यायः व्यक्तस्य प्रधानम् हेतुरस्ति अतो हेतुमद् व्यक्तम् भूतपर्यन्तम् हेतुमद् बुद्धितत्त्वं प्रधानेन हेतुमानहंकारो बुद्ध्या पञ्च तन्मात्राणि एकादशेन्द्रियाणि हेतुमन्त्यहंकारेण आकाशः शब्द तन्मात्रेण हेतुमत् वायुः स्पर्श तन्मात्रेण हेतुमान तेजो रूप तंत्र मात्रेण हेतुमत् आपो रस तन मात्रेण हेतुमत्यः पृथ्वी गंध तन मात्रेण हेतुमति एवं भूत पर्यंतम् व्यक्तम् हेतुमत् किंचान्यत् अनित्यम् यस्मादन्य स्मादुत्पद्यते यथा मृत्पिण्डादुत्पद्यते घटः स चानित्यः किंच अव्यापी असवर्गत् मित्यर्थ यथा प्रधान पुरुषौ सर्व जगतौ नैवं व्यक्तं किंचान्यत् माश्रित्य संसरति तस्मात् सक्रियं किंचान्यत् अनेकं बुद्धिर अहंकार पंच तन्मात्राणि कादशेन्द्रियाणि पंच महाभूतानि चेति किंचान्यत् आश्रितं स्व कारणमाश्रयते प्रधानाश्रिता बुद्धि बुद्धिमाश्रितो अहंकारः अहंकाराश्रितानेका दशेन्द्रियाणि पंच तन्मात्राणि च पंच तन्मात्राश्रितानि पंच महाभूतानि किंच लिंगम लययुक्तम लयकाले पंच महाभूतानि तन्मात्रेषु लीयन्ते तान्येका दशेन्द्रियैः सहंकारे स च बुद्धौ सा च प्रधाने लयम् यातिति तथा सावयवम् अवयवाः शब्द स्पर्श रूप रस गंध तैः सह किंच परतंत्रम नात्मानः प्रभवति यथा प्रधान तंत्रा बुद्धि बुद्धि तंत्रो अहंकार अहंकार तंत्राणि तन्मात्राणि इन्द्रियाणि च तन्मात्र तंत्राणि पंच महाभूतानि च एवं परतंत्रम परायत्तम व्याख्यातम व्यक्तम। अथो अव्यक्तम् व्याख्यास्यामः विपरीतम् व्यक्तम् एतैरेव गुणैर्यथो तै विपरीतम् व्यक्तम् हेतुमद् व्यक्तमुक्तम् न हि प्रधानात् परम् किञ्चिदस्ति यतः प्रधानस्यानुत्पत्ति तस्माद् अहेतुम् दव्यक्तम् तथा अनित्यम् च व्यक्तम् नित्य व्यक्तमनुत्पादत्वात् न हि भूतानिव कुतश्चिदुत्पद्यत् व्यक्तम प्रधानम किंचा व्यापी व्यक्तम व्यापी प्रधानम सर्वगतत्वात् सक्रियम व्यक्तम अक्रियम व्यक्तम सर्वगतत्वादेव तथानेकम व्यक्तम एकम प्रधानम कारणत्वात् त्रयाणाम लोकानाम प्रधानम एकम कारणम तस्मादेकम प्रधानम तदाश्रितम व्यक्तम अनाश्रितम व्यक्तम कार्यत्वात् न हि प्रधानात् किंचिदस्ति परम यस्य प्रधानम कार्यम स्यात् तथा व्यक्तम लिंगम अलिंगम व्यक्तम नित्यत्वात् महदादि लिंगम प्रलय काले परस्परम प्रलीयते नैवम प्रधानम तस्माद् लिंगम प्रधानम तथा सावयवम व्यक्तम निरवयवम व्यक्तम न हि शब्द स्पर्श रूप रस गंधाः प्रधाने सन्ति तथा परतंत्रम व्यक्तम स्वतंत्रम व्यक्तम प्रभवत्यात्मनः। गौणपाद भाष्य का भावार्थ। सांख्य दार्शनिकों ने जड़ पदार्थों को दो भागों में विभक्त किया है व्यक्त तथा अव्यक्त। प्रस्तुत कारिका में उक्त विभाजन के अनुसार उभय वर्गों के भिन्न भिन्न धर्मों का व्याख्यान किया जा रहा है। व्यक्ताव्यक्त पद का अर्थ तथा तद्वर्गीय पदार्थों का नाम संकीर्तन। कारण से कार्य की अभिव्यक्ति होने से कार्य को व्यक्त तथा अनभिव्यक्त कारण को अव्यक्त कहा जाता है। यद्यपि व्यक्त भी अपने कार्य की दृष्टि से अव्यक्त है, तथापि यहाँ मूल कारण अव्यक्त जिसका कोई कारण नहीं है की तुलना में समस्त कार्य समुदाय व्यक्त कहा जाता है। अव्यक्त एकाकी प्रकृति है। व्यक्त बुद्धि अहंकार पंच तन्मात्राएं एकादश इंद्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय तथा मन तथा पंच महाभूत है। व्यक्त के धर्म हेतु रस्या स्थिति हेतु मत अर्थात जिसका हेतु होता है उसे हेतु मत कहते हैं। आचार्य गौड़पाद ने उपादान हेतु कारण तथा निमित्त शब्दों को पर्याय कहा है। इन्होंने कारण के दो विशेष रूप उपादान तथा निमित्त पर ध्यान न देकर उपादान और निमित्त शब्दों को कारण अर्थ में सामान्यतः प्रयुक्त किया है। वस्तुतः कारिकागत हेतु शब्द से उपादान कारण का ग्रहण होता है। इस प्रकार हेतुमान पदार्थ उत्पत्तिशील तथा कार्य रूप सिद्ध होता है। यद्यपि अव्यक्त व्यक्त मात्र का हेतु है, तथापि साक्षात कारण की दृष्टि से इतना विशेष ज्ञातव्य है कि प्रधान की दृष्टि से बुद्धि तत्व की दृष्टि से अहंकार, अहंकार की दृष्टि से एकादश इंद्रियां तथा पंच तन्मात्र एवं पंच तन्मात्र की दृष्टि से पंच महाभूत हेतुमान है। तन्मात्राओं में भी शब्द तन्मात्र की दृष्टि से आकाश स्पर्श तन्मात्र की दृष्टि से वायु रूप तन्मात्र की दृष्टि से तेज रस तन्मात्र की दृष्टि से जल तथा गंध तन्मात्र की दृष्टि से पृथ्वी हेतुमती है। व्यक्त पदार्थों के धर्म प्रदर्शन में उत्पत्ति धर्म को इसलिए सर्वप्रथम रखा गया है कि वह व्यक्त निष्ठ अन्य धर्मों में प्रधान है। उत्पद्यमान पदार्थ अनित्य होता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्त अनित्य अर्थात विनाशी है। जैसे मृत समुदाय से उत्पन्न घट अनित्य होता है। जिस पदार्थ की सर्वत्र उपस्थिति रहती है उसे व्यापक और एक देश वृत्ति वाला पदार्थ अव्यापक कहा जाता है। प्रधान एवं पुरुष व्यापक अर्थात सर्वगत है। इसके विपरीत यच यावत व्यक्त पदार्थ अव्यापक धर्म वाले हैं। महदादि व्यक्त पदार्थ क्रियाशील हैं, अर्थात संसार काल में संसरण करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बुद्धि आदि व्यक्त पदार्थ पुनः पुनः ग्रहण किए गए शरीर को त्याग कर दूसरा दूसरा शरीर ग्रहण करते हैं। यही प्रवेश एवं निस्सरण रूप क्रियाएं व्यक्त पदार्थों को सक्रिय धर्म प्रदान करती हैं। यदि कहा जाए कि पुरुष को भोग मोक्ष प्रदान करने में बुद्धि आदि व्यक्त पदार्थों का सक्रिय योगदान रहता है, अतः वे सक्रिय कहे जाते हैं, तो ऐसा कहना अनुचित न होगा। व्यक्त वर्ग में 23 तत्व हैं, अतः वे अनेक धर्म वाले हैं। अथवा प्रत्येक पुरुष के बुद्धि आदि व्यक्त पदार्थ भिन्न भिन्न होने से उन्हें अनेक पुकारा जाता है। जिस प्रकार राजा की कृपा से जीवन यापन करने वाला सेवक राजाश्रित होता है, उसी प्रकार कारण से प्रकाश अभिव्यक्ति प्राप्त करने वाला व्यक्त कार्य भी कारणाश्रित कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रधान के आश्रित बुद्धि, बुद्धि के आश्रित अहंकार, अहंकार के आश्रित एकादश इंद्रियां तथा पंच तन्मात्र और पंच तन्मात्र के आश्रित पंच महाभूत हैं। अथवा सभी व्यक्त पदार्थ मूलतः प्रधानाश्रित हैं। सांख्य योग दर्शन में जिसका जिससे आविर्भाव होता है उसका उसी में तिरोभाव होता है, ऐसा माना गया है। और चूंकि कार्य का आविर्भाव होता है अतः तिरोभाव भी उसी का होगा। इस प्रकार कार्यात्मक व्यक्त पदार्थ लयशील सिद्ध होता है। पीछे जिस क्रम से व्यक्त पदार्थों की उत्पत्ति वर्णित हुई है उसके ठीक विपरीत क्रम से यहाँ भूतादि व्यक्त पदार्थों का लय समझना चाहिए। सांख्यकारिका की तत्वकौमुदी आदि अन्य टीकाओं में लिंग शब्द करणानुमापक अर्थ में आया है, अर्थात व्यक्त पदार्थ अपने अपने कारण का अनुमान कराते हुए मूल कारण प्रकृति की सत्ता के अनुमान में लिंग हेतु ज्ञापक बनते हैं। व्यक्त पदार्थ सावयव अर्थात अवयव युक्त हैं। अवयव शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध हैं। व्यक्त पदार्थ पराधीन हैं, ये स्वतंत्र रहकर कार्योत्पत्ति में समर्थ नहीं है। जैसे बुद्धि प्रधान के अधीन है और अहंकार बुद्धि के अधीन है, इसी प्रकार अन्य व्यक्त तत्वों को भी समझना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रधान निरपेक्ष होकर अर्थात स्वतंत्र रूप से बुद्धि अहंकारोत्पत्ति में समर्थ नहीं होती, यही स्थिति अन्य व्यक्त पदार्थों की भी है। अव्यक्त के धर्म। ऊपर व्यक्त के 9 धर्मों की चर्चा हुई, ये धर्म अव्यक्त प्रकृति में उपलब्ध नहीं होते हैं। प्रधान में हेतुमत आदि धर्मों का अत्यंता भाव रहता है, अतः व्यक्त से अव्यक्त पृथक है। अब उपर्युक्त आशय को स्पष्ट करते हैं। अव्यक्त एक ऐसा तत्व है जो सबका कारण होते हुए भी स्वयं किसी का कार्य नहीं है। प्रधान में उत्पत्ति मत्ता न होने से उसे अहेतुमत कहा गया है। अनित्यता एवं उत्पत्तिमत्ता में व्याप्ति संबंध, यत्र यत्र उत्पत्तिमत्वम तत्र तत्र अनित्यत्वम, यथा घट रहने से उत्पत्ति शून्य अव्यक्त प्रकृति नित्य पुकारी जाती है। अव्यापक व्यक्त से भिन्न अव्यक्त प्रकृति व्यापक है, क्योंकि वह सर्वगत है। सर्वगत होने से ही व्यापक प्रकृति को निष्क्रिय कहा है, अर्थात व्यक्त पदार्थों की भांति उसमें प्रवेश, निःसरण आदि क्रियाएं नहीं है। व्यक्त की भांति अव्यक्त प्रकृति अनेक नहीं अपितु एक ही है, क्योंकि वही तीनों लोकों की एकमात्र कारण है। कार्य रहित अव्यक्त प्रकृति में कैसी आश्रयिता, क्योंकि कार्य ही कारण के आश्रित रहता है। अतः प्रकृति अनाश्रित हुई, जिसका उदय होता है उसी का अंत भी होता है। यह उदयास्तता अनित्य पदार्थों का धर्म है। नित्य होने से जिसका आविर्भाव ही नहीं हो तो उसका तिरोभाव कैसे और किसमें? अतः त्रैकालिक सत्तावान अव्यक्त को अलिंग लय शून्य कहा गया है। प्रधान में शब्द स्पर्श रूप रस एवं गंध अवयव न रहने से अव्यक्त अनवयव धर्म वाला है, जिसे स्वकार्य जनन में दूसरे की अपेक्षा नहीं, फिर वह परम मुखापेक्षी क्यों रहे? अतः अपने में पूर्ण समर्थ अव्यक्त प्रकृति स्वतंत्र है। इस प्रकार व्यक्त एवं अव्यक्त का वैधर्म प्रतिपादित हुआ।